हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और तारा अमन के बचपन के बारे में विक्रांत से पूछ बैठी थी। विक्रांत को तारा से बात करने का बहाना चाहिए था, सो उसे मिल गया था और वो वहां बैठकर तारा को अमन के बचपन के किस्से सुनाने लगा था। लेकिन उन दोनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे उस वक्त किसी की निगाहों के घेरे में थे। वे कोई और नहीं बल्कि अमित और मल्लिका थे, जो तारा और विक्रांत को बात करते हुए देख रहे थे। विक्रांत के साथ तारा को देखकर मल्लिका मन ही मन खुश हो रही थी। वो सोच रही थी, अगर कुछ ऐसा किया जाए कि विक्रांत और तारा को एक साथ कर दिया जाए तो अमन अपने आप ही उन दोनों से दूर हो जाएगा, क्योंकि विक्रांत अमन का बचपन का दोस्त था। अगर विक्रांत को तारा पसंद आ जाए तो हो सकता है अमन अपने प्यार की कुर्बानी दे दे, क्योंकि जहां तक अमन के बारे में सबको पता था, उसके बारे में ये बात बहुत ही ज्यादा मशहूर थी कि अमन सिंह राठौड़ अगर किसी को एक बार अपना ले तो वो उसके हर दुख सुख सब अपना लेता है और उसकी जिंदगी भर साथ देता है। तो हो सकता है कि वो अपने बचपन के दोस्त के लिए अपनी मोहब्बत को भी कुर्बान कर दे। मल्लिका के मन में उठापटक विचार आने लगे थे। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित विक्रांत को देखकर कुछ सोचने लगा था। तब मल्लिका ने उससे पूछा था, क्या हुआ मालिक, आप क्या देख रहे हैं? तब अमित ने मल्लिका से कहा था, ना जाने क्यों ये विक्रांत रंधावा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जब जब मैं इसके पास जाता हूँ मुझे अजीब सी घुटन होती है। जैसे ही अमित ने ये कहा तब मल्लिका हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली थी, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पार्टी वाली रात जब मैं विक्रांत रंधावा के साथ डांस कर रही थी तब मुझे उसमें से अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया था। हो सकता है कि किसी और चीज़ की स्मेल हो, वो स्मेल विक्रांत में से ही आ रही थी ये मैं श्योर नहीं थी। मालिक की बात सुनकर अमित कुछ सोचने लगा था और बोला था, मुझे लगता है इस विक्रांत की कुछ न कुछ कहानी जरूर है, मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। कुछ सोचते हुए अमित कहीं चला गया था और मल्लिका उसे जाते हुए देखती रही थी। वहीं दूसरी ओर अमन सिंह राठौर सीधा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका था। कितने सारे बॉडीगार्ड्स के बीच से होता हुआ अमन सिंह राठौर ने जैसे ही पुलिस स्टेशन में कदम रखा तो हर किसी की निगाह उस पर जाकर ठहर गई थी। लेकिन पुलिस स्टेशन का माहौल कुछ अजीब सा था। जैसे ही अमन अंदर गया उसे देखकर जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे वे सभी एक लाइन से खड़े हो गए थे और उनमें से एक डरते हुए बोला था, मिस्टर राठौर आप यहाँ, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, आप हमें कॉल कर देते हम खुद ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाते। पुलिस वाले ने अमन को मक्खन लगाते हुए कहा था, लेकिन अमन ने उसे कहा था, मेरा यहाँ आना के पीछे मेरा एक पर्सनल काम था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। फिलहाल मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने किसी चोर को अरेस्ट किया है क्या आज सुबह? जैसे ही अमन के मुंह से उस चोर के बारे में पुलिस वालों ने सुना वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे। इस तरह का बिहेवियर देखकर अमन चौंक गया और बोला था, मैंने आप लोगों से कुछ पूछा है, जवाब दीजिए, क्या आज सुबह आप लोगों ने किसी चोर को अरेस्ट किया है? एक लड़की ने कंप्लेंट की थी, राइट? वो चोर कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जैसे ही अमन ने ये कहा उन पुलिस वालों को मानो सांप सूंघ गया था और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे थे और सभी ने अपने सर झुका रखे थे। इस बार अमन ने थोड़े तल्ख लहजे में बोला था, आप लोगों को कम सुनाई देता है, मैं कब से पूछ रहा हूँ वो चोर कहाँ है जिसे आज सुबह एक लड़की ने अरेस्ट करवाया था। अमन की बात सुनकर जो उस थाने का सीईओ था वो सामने आया और बोला था, वो एक्चुअली सर सभी लोग इसलिए चुप हैं कि आज सुबह ही पुलिस स्टेशन में एक बड़ा हादसा हो गया है। क्या? अमन चौंक गया था और बोला था, कैसा हादसा, क्या बात कर रहे हैं आप, खुलकर बताइए क्या हुआ था? तब वो सीईओ थोड़ा डरते डरते बोला था, एक्चुअली सर जिस चोर को पूछने के लिए आप यहाँ तक आए हैं उस चोर का रहस्यमय तरीके से खून हो गया है। क्या? जैसे ही अमन ने ये सुना उसका शौक के मारे बुरा हाल हो गया था और उसने कहा था, ये आप क्या कह रहे हैं, खून हो गया है, कहाँ है वहाँ, जरा मुझे भी तो दिखाइए। ऐसा कहकर अमन ने जैसे ही ये कहा तब वे पुलिस वाले अमन को उस सेल के अंदर ले गए थे जिस सेल में वो चोर बंद था। जैसे ही अमन ने उस चोर का चेहरा देखा तो उसे समझते हुए देर नहीं लगी थी कि इसकी मौत किस तरह से हुई होगी, क्योंकि उसके पूरे गले की एक एक हड्डियां टूट चुकी थीं। उसे बहुत ही बुरी मौत मारी गई थी। तब अमन ने पुलिस वालों की ओर देखते हुए कहा था, तो क्या आप लोगों को नहीं पता कि इसकी मौत कैसे हुई है और इसे किसने मारा है? पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी तो लगे होंगे ना, राइट? तो उसमें चेक कीजिए। तब एक पुलिस वाला बोला था, हमने सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया सर, लेकिन उसमें भी कोई नजर नहीं आ रहा है। अचानक से ही ये आदमी अपना गला पकड़ने लगा था और जब तक हमारे हवलदार और स्टाफ की नज़र उस पर गई तब तक उसकी जान जा चुकी थी। पुलिस वालों की बात सुनकर अमन कुछ सोचने लगा था और बोला था, आप एक काम कीजिए, मुझे उस सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। अब क्योंकि ये अमन सिंह राठौर का आदेश था तो कोई भी पुलिस वाला उसे मना नहीं कर सकता था। हालांकि ये पुलिस वालों के रूल रेगुलेशन के खिलाफ था कि इस तरह से पुलिस के सीसीटीवी फुटेज वे किसी भी आम पब्लिक को दिखाएं, लेकिन उस वक्त उनके सामने कोई आम पब्लिक नहीं खड़ी हुई थी। उनके सामने अगर कोई खड़ा हुआ था तो वो था अमन सिंह राठौर, जो एक झटके में पूरे पुलिस स्टेशन को खरीद सकता था। ये बात वहाँ का पुलिस ऑफिसर अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें अमन की ताकत का अच्छी तरह से अंदाज़ा था, क्योंकि अमन उस शहर का सबसे बड़ा आदमी था। उसके पास पैसा, पावर, रिस्पेक्ट सब कुछ था, लेकिन फिर भी अमन ने आज तक इस बात का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। और वो पुलिस स्टेशन में भी आज इसलिए चला गया था क्योंकि उस चोर ने उसके बीवी पर अटैक किया था, तो इसीलिए अमन सिंह राठौर उस चोर को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन उसे इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि उस चोर को ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी थी, और अमन यही सोचकर अब हैरान परेशान हो गया था कि आखिर किसने उसकी जान ली होगी। तभी एक पुलिस वाले ने उसे बताया था, सर हमने सीसीटीवी फुटेज चालू कर दी है, आप देख लीजिए। अमन जल्दी से बैठकर बारीकी से उस फुटेज को देखने लगा था। उस सेल में लगे कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लड़का जो कि वो चोर था वो अपना गला खुद ही दबा रहा था। अमन ने बड़ी ही बारीकी से वो फुटेज देखी थी। उसे जल्दी ही काला धुआं नजर आने लगा था। अमन को समझते हुए एक पल भी नहीं लगा था कि किसी काली शक्ति ने ही उस चोर की जान ली थी। लेकिन इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है? वो चोर का तो अमन से कोई लेना देना ही नहीं था, उसने तो तारा को चोट पहुंचाई थी। तो इसका मतलब साफ था, अमन को समझते हुए देर नहीं लगी थी कि कोई काली शक्ति जो उस वक्त अमन के पीछे नहीं बल्कि तारा के पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि तारा के पेट में अब अमन का बच्चा पल रहा था। अमन अब तारा और अपने होने वाले बच्चों की सिक्योरिटी को लेकर चिंता करने लगा था और जल्दी ही वापस से ऑफिस की ओर रवाना हो चुका था। कितनी देर तक विक्रांत रंधावा तारा को देखता रहा था, तारा को अब उसकी आंखों से कुछ उलझन सी होने लगी थी, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती थी। तारा उस वक्त अपने केबिन में अकेला रहना चाहती थी,
क्योंकि जैसा कि उसे अपनी शक्तियां प्रयोग करने की इजाज़त मिल चुकी थी तो इसीलिए तारा अपनी शक्तियों को प्रयोग करने के लिए मजा ले रही थी। उसका दिल कर रहा था वो सब कुछ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा अपने पास बुलाए, जैसे कि पानी का गिलास खुद बखुद उठ जाए और उसके मुंह तक आ जाए, खुद बखुद उसके सामने कॉफी आ जाए, खुद बखुद अपनी पसंद का वो सारा खाना मंगवा ले। जाने क्या क्या उसके दिमाग में उस वक्त चल रहा था। साथ ही साथ वो सोच रही थी कि काश एक बार वो आकाश में उड़े। उसका बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, क्योंकि कितने ही दिनों से उसने आकाश की सैर नहीं की थी। जबकि वो परीलोक में थी तो हर रोज कितनी ही देर तक वो बादलों के बीच में सैर किया करती थी और अपने परों के द्वारा उड़ती रहती थी, लेकिन जब से वो पृथ्वी लोक में आई थी उसे अपनी शक्तियां प्रयोग करने की इजाज़त तो थी ही नहीं। लेकिन अब उसका दिल कर रहा था कि वो सब कुछ करे जो वो करना चाहती थी, और उसके अंदर परी की शक्तियां तो थी ही, साथ ही साथ उसके अंदर महाशक्तिशाली बच्चा भी पल रहा था। ये बात वो अच्छी तरह से जानती थी। कितनी ही देर तक विक्रांत रंधावा वहाँ बैठा रहा था, तभी किसी प्यून ने वहाँ आकर बताया था कि अमन सर आ गए हैं और विक्रांत सर को बुला रहे हैं। जैसे ही तारा ने ये सुना वो मन ही मन उस प्यून का शुक्रिया अदा करने लगी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बस जल्दी से कोई आए और उसे विक्रांत को वहाँ से ले जाए, क्योंकि विक्रांत को अपने सामने देखना न जाने क्यों उसे अजीब सा लग रहा था। उसे घुटन सी होने लगी थी। विक्रांत की आंखें कुछ अजीब सी थीं, लेकिन तारा ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। हालांकि उसे राक्षस के अंश के बारे में पता था, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि राक्षस का अंश विक्रांत रंधावा के अंदर भी हो सकता था।